This podcast is an HT Smartcast original. Podcasts for every mood.
क्या कभी आपने सोचा है कि वो कौन सा स्थान होगा जहां माता सीता की करुण पुकार पर धरती माता भी करुणा से पिघलकर उन्हें गोद में बैठाकर अपने साथ वापस ले गई। माता सीता का माता सती के साथ इतना गहरा संबंध क्यों है कि उन्होंने जन्म भी लिया तो माता सती के मिथिला शक्ति पीठ पर, वनवास के 11 वर्ष 6 महीने भी शक्ति पीठ पर ही रही, और अंत में जब धरती माँ को पुकार कर ये संसार छोड़ा तो भी माता सती के शक्ति पीठ पर। 51 शक्ति पीठ विद निष्ठा के इस एपिसोड में मैं आपको लेकर चल रही हूँ उत्तर प्रदेश के तुलसीपुर क्षेत्र में, जहाँ पर स्थित है देवी पाटन शक्तिपीठ। ये वो पावन धरती है जो सतयुग से माता सती के वस्त्र और बाएं कंधे के निपात से ऊर्जावान हुई। उसके बाद हर युग में ये अपना इतिहास बनाती चली गई। इस स्थान की शक्ति है माँ पटनेश्वरी, और भैरव यानी शिव को काल भैरव के रूप में पूजा जाता है।
नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और मैं आप सभी का HT Smartcast की ओरिजिनल पेशकश 51 शक्तिपीठ पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के अंग आभूषण तथा वस्त्र के हिस्से धरती माँ ने धारण किए वहाँ वहाँ शक्ति पीठ बने। इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको ले चलूंगी देवी के 51 शक्ति पीठ की यात्रा पर, जिसमें जानेंगे कि शक्ति पीठ कैसे बने, उनका महत्व क्या है, उसकी कहानी और वहां कैसे पहुंचे।
देवी पुराण के 9वें स्कंद में भी माँ पाटेश्वरी की महिमा का सुंदर चित्रण है, और देवी भागवत पुराण के 6ठे स्कंद के 16, 17 और 30वें अध्यायों में माँ पाटेश्वरी देवी के महात्म्य का वर्णन है। देवी भागवत पुराण में वर्णित है, पाटेन सहितः स्कंधः पपात यत्र भूतले तत्र पाटेश्वरी नामना ख्याति माप्ता महेश्वरी। इस श्लोक के अनुसार माता सती का वाम स्कंध पट सहित इसी स्थान पर गिरा था। देवी के पट का निपात होने से इस स्थान का नाम देवी पाटन हुआ। देवी की ऊर्जा से यह ज्योति प्रकट हुई और ये स्थान शक्ति पीठ बना। सतयुग से यह अखंड धूना अर्थात अखंड ज्योति आज वर्तमान समय तक जलती आ रही है। कालांतर में देवी सीता लोक अपवाद से खिन्न होकर इस स्थान से ही पाताल लोक में समा गई थी। उनके जाने के बाद इस स्थान का नाम पातालेश्वरी भी प्रसिद्ध हुआ। इस पाताल गामी सुरंग के ऊपर वर्तमान देवी पाटन पातालेश्वरी देवी का मंदिर बना हुआ है। इसके अतिरिक्त इस स्थान को पाटन देवी शक्तिपीठ भी कहा जाता है। देवी पाटन सिद्ध योग पीठ और शक्तिपीठ दोनों है। हम सब जानते हैं कि त्रेता युग में जब श्री राम ने रावण का वध कर सीता माँ को मुक्त कराया, तब लंका में ही माता सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। वो परीक्षा भी हृदय को विदीर्ण कर देने वाली थी। उसके बाद भी अयोध्या आने के बाद प्रजा द्वारा उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठाने पर देवी सीता गुरु वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने चली गई। वहीं राजकुमार लव कुश का जन्म और पालन पोषण हुआ। जब लव कुश बड़े हो गए तब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ कराया। दोनों कुमारों ने उस अश्व को रोकने का साहस दिखाया। तब श्री राम ने दोनों वीर कुमारों से मिलने की इच्छा प्रकट की। वे देखना चाहते थे कि इतने वीर और साहसी बालक कौन हैं जो उनके अश्व को रोक सके। वे दोनों अपने गुरु वाल्मीकि के आदेश अनुसार श्री राम से मिलने गए तथा सभी को रामायण कथा सुनाई। अंत में उन्होंने स्वयं को श्री राम तथा माता सीता का पुत्र बताया। इसके पश्चात प्रजा के द्वारा इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। श्री राम ने जब ये सुना तो लोक मत को ध्यान में रखकर उन्होंने सीता को स्वयं यहाँ आकर इसका प्रमाण देने के लिए कहा तथा अपनी शुद्धता की शपथ लेने का आदेश दिया। तब माँ सीता वहाँ पहुँची तो उन्हें पुनः अग्नि परीक्षा देने को कहा गया। इससे माता सीता का धैर्य टूट गया और उनको अत्यंत दुख हुआ और उनका मन संसार से खिन्न हो गया। उन्होंने अपनी माता धरती से विनय किया कि यदि वे वास्तव में सती हैं तो यही माता सती के शक्तिपीठ स्थल पर धरती फट जाए और धरती माता उन्हें अपने में समाहित कर ले। इतना कहते ही जमीन फट गई और एक सिंहासन पर बैठकर धरती माँ पाताल लोक से ऊपर आई। अपनी धरती माँ के साथ सीता जी भी पाताल लोक में चली गई। ऐसी मान्यता है कि इस शक्तिपीठ के गर्भगृह से आज भी पाताल लोक तक की सुरंग निकलती है। श्री राम द्वारा देवी सीता के परित्याग की घटना कितनी सत्य है ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस दोनों में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं है। मेरा मन इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता कि ऐसी कोई भी घटना भारतीय इतिहास में हुई हो जहाँ नारी को सदैव पूजा गया है। जो श्री राम माता सीता को लौटा लाने के लिए वन में सेना तैयार करते हैं, समंदर पार करके रावण से युद्ध करके माता को वापस ले आते हैं, वो उनका परित्याग किसी भी परिस्थिति में कैसे कर सकते हैं? परंतु इस स्थान पर ये कहानी बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इस शक्तिपीठ स्थान से जुड़ी हर बात, हर जानकारी उपलब्ध कराने का है। फिर समय बीता और द्वापर युग आ गया। भगवान परशुराम का आश्रम द्वापर युग में इसी शक्तिपीठ स्थान पर था। यही उन्होंने तपस्या की थी। सूर्य पुत्र कर्ण ने भी यही भगवान परशुराम से दिव्य अस्त्रों की दीक्षा ली थी। देवी पाटन मंदिर परिसर में ही उत्तर की तरफ एक विशाल सूर्य कुंड है। कहते हैं कर्ण इसी सूर्य कुंड में प्रतिदिन स्नान करके उसी जल से देवी की आराधना करते थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। इसी स्थान पर भगवान शिव की आज्ञा से महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने देवी की पूजा अर्चना के लिए एक मठ का निर्माण कराया और स्वयं लंबे समय तक यहाँ माँ पाटेश्वरी की पूजा करते हुए साधनारत रहे। उन्होंने यहाँ तपस्या की और योग परंपरा को आगे बढ़ाया, इसीलिए इस स्थान को योग पीठ भी कहा जाता है। फिर कालांतर में यहाँ माता के एक और परम भक्त हुए जिनका नाम महात्मा रतननाथ था। स्थानीय कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वो अपनी सिद्ध शक्तियों की सहायता से एक ही समय में नेपाल देश के दांग चौखड़ा और देवी पाटन में विराजमान माँ पाटेश्वरी की एक ही साथ पूजा किया करते थे। उनकी तपस्या व पूजा से प्रसन्न होकर माँ पाटेश्वरी ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर वरदान दिया कि मैं आपकी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ और अभी से मेरे साथ आपकी भी पूजा होगी, लेकिन अब आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आपकी एक सवारी आएगी। इसके बाद से भारत के पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से शक्तिपीठ देवी पाटन रतननाथ जी महाराज की सवारी हर वर्ष आती है। रतननाथ जी की सवारी चैत्र नवरात्रि में द्वितीया के दिन देवी पाटन के लिए प्रस्थान करती है, जो पंचमी के दिन देवी पाटन पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण करती है और नवमी तक यही विराजमान रहती है। तत्पश्चात नवमी की मध्य रात्रि को ये सवारी पुनः नेपाल राष्ट्र के लिए प्रस्थान करती है और इस दौरान मंदिर में लगे घंटे बजाए नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रतननाथ जी ध्यानावस्थित हैं। भारत और नेपाल के अनेकों श्रद्धालु इस मौके पर उपस्थित रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तक बाबा रतननाथ जी यहाँ पाटन में अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 178 किलोमीटर और 4 घंटे 15 मिनट की दूरी पर बलरामपुर जिला मुख्यालय से तुलसीपुर क्षेत्र में स्थित है पाटेश्वरी अर्थात पाटन देवी शक्तिपीठ, जहां देवी सती का बायां कंधा वस्त्र सहित गिरा था। तभी से ये स्थान बहुत ही पवित्र माना गया। माता का ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध और भव्य है। इसका निर्माण सफेद मार्बल से किया गया है। दूर से ही मंदिर के ऊपरी शिखर पर लहराता हुआ लाल चुनरी का ध्वज दिखाई देता है। इसके साथ ही मंदिर के ऊपर ही एक बड़ा त्रिशूल है, जो कि इसकी दिव्यता को और भी बढ़ा देता है। जिस दिशा में हवा चलती है उसी दिशा में लहराता हुआ लाल ध्वज बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। मंदिर के बाहर ही बहुत सारी दुकानें हैं जहां से आप प्रसाद और खाने पीने और देवी माँ की चुनरी आदि खरीद सकते हैं। दोनों तरफ सजी दुकानें बहुत ही आकर्षक प्रतीत होती हैं। मंदिर का आर्किटेक्चर परंपरागत उत्तर भारतीय मंदिरों जैसा है। प्रवेश द्वार चार विशाल खंभों के साथ बहुत ही भव्य और आकर्षक दिखाई पड़ता है। मंदिर का परिसर बहुत ही बड़ा है। मंदिर के परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा भगवान शिव, बजरंगबली, हनुमान और अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी बनाए गए हैं। मंदिर में एक बहुत ही प्राचीन नीम का वृक्ष है, जिस पर मन्नत के धागे और माता की चुनरी लपेटी जाती है। आइए अब उस अलौकिक स्थान के दर्शन करते हैं जो माता सती और माता सीता दोनों से जुड़ा है। मुख्य मंदिर में प्रवेश करते ही सामने माता का गर्भगृह है। माता का गर्भगृह लाल पत्थरों से निर्मित है। यहाँ का फर्श काले सफेद चेक मार्बल से बना है। माता का स्थान पूर्णतः चांदी से निर्मित है। पहले इस गर्भगृह में कोई प्रतिमा नहीं थी, अब यहाँ दुर्गा रूप में माँ पाटेश्वरी की प्रतिमा स्थापित की गई है। ऐसा लगता है जैसे बस माँ को निहारते ही जाएं। मुख्य स्थान इस प्रतिमा के सामने बना चांदी का चबूतरा है। इसी के ऊपर दो अखंड ज्योतियां जलती रहती हैं, जो मुख्य शक्तिपीठ स्थान है। इसी के नीचे वो स्थान है जहां माता सीता धरती माँ में समा गई थी। आज भी मंदिर से पाताल तक सुरंग जाती है। इसके ऊपर कई रत्न जड़ित सोने के छत्र हैं और ताम्र पत्र पर दुर्गा सप्तशती अंकित है। इस चबूतरे के ऊपर कपड़ा बिछा रहता है, जिस पर श्रद्धालु फल फूल प्रसाद आदि चढ़ाते हैं। भक्त देवी को नैवेद्य, नारियल, जायफल, धातु की आंख, छत्र, ध्वजा, धूप, दीप, सिंदूर, अंजीर, लौंग और अक्षत चढ़ाते हैं और फिर मन्नत मांगते हैं। इस गर्भगृह की ऊर्जा अलौकिक है। ये वो ही महसूस कर सकता है जो वहाँ उपस्थित है। इस अलौकिक ऊर्जा को धारण किए भक्त इसकी परिक्रमा करते हैं। मंदिर के परिक्रमा मार्ग में माता के यंत्र विद्यमान हैं, जो शक्ति उपासकों के लिए साधना के महत्वपूर्ण साधन बताए जाते हैं। इस स्थान का तांत्रिक महत्व भी है। भूत प्रेत आदि की बाधाएं शांत करने के लिए यहाँ तंत्र साधना और विशेष पूजा होती है। देवी पाटन के मंदिर में चांदी के चबूतरे के अलावा शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री नवदुर्गा की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। मंदिर परिसर में ही गोरखनाथ बाबा का आश्रम है, जहां पर उनके पग चिन्ह की पूजा की जाती है। मंदिर परिसर के उत्तर में प्राचीन एवं ऐतिहासिक सूर्य सरोवर है। इसे सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोग मानते हैं कि इस कुंड के जल में औषधीय गुण है और इसे भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त है। इसमें स्नान करने से कुष्ठ रोग और चर्म रोग यानी स्किन प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। आज भी सभी लोग माता के दर्शनों से पहले कुंड में स्नान करते हैं, फिर देवी माँ की पूजा और आराधना करते हैं। वर्तमान समय में इस सरोवर में नौका विहार की सुविधा भी सभी श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध है। आप भी इसका आनंद ले सकते हैं। नवरात्रि यहाँ का प्रमुख त्योहार है। नवरात्रि के दिनों में माँ पाटेश्वरी की विशेष पूजा और आराधना की जाती है। यहाँ भोग के रूप में चावल की विशेष पूजा होती है। नवरात्रि के 9 दिन माता की पिंडी के पास चावल की ढेरी बनाकर माता की विशेष पूजा की जाती है और बाद में उसी चावल को भक्तों में वितरित कर दिया जाता है। रविवार के दिन माता को हलवे का भोग लगाया जाता है, जो उन्हें अति प्रिय है। साथ ही शनिवार को आटे व गुड़ से बनी रोटी का विशेष भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के दिनों में करीब 5,00,000 लोग माता के दर्शनों के लिए देश और विदेश से आते हैं, जिनकी पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाती है। साथ ही भीड़ ज्यादा होने पर मंदिर परिसर में ही माता की विशेष पूजा अर्चना के लिए व्यवस्था कर दी जाती है। दोनों नवरात्रि के दौरान यहां भव्य मेले का आयोजन होता है। चैत्र नवरात्रि का मेला पूरे 1 महीने तक चलता है। श्रद्धालु नारियल और चुनरी देवी माँ को चढ़ाते हैं। मंदिर परिसर में ही 2 बड़े बड़े बरगद के पेड़ भी हैं। इन पर भक्त अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए चुनरी व धागा बांधते हैं। ये मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक दर्शनों के लिए खुला रहता है। आइए अब जानते हैं कि हम यहाँ आसानी से कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ है, जो पाटन देवी मंदिर से लगभग 202 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से टैक्सी या बस सेवा से आप शक्तिपीठ तक पहुंच सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन बलरामपुर है, जो यहाँ से लगभग 31 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर की सड़कें देश के अन्य शहरों से अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं, इसलिए आप देश के किसी भी हिस्से से अपने स्वयं के वाहन या किसी भी सार्वजनिक बस या टैक्सी द्वारा भी इस मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम चलेंगे नेपाल के काठमांडू में, जहां पर स्थित है कुहियेश्वरी देवी शक्तिपीठ, जिसके बारे में मान्यता है कि वहां देवी माँ के दोनों घुटनों का निपात हुआ था।
आगे की कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और आप सुन रहे हैं 51 शक्तिपीठ। अगर आप कोई जानकारी या फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, निष्ठा सारस्वत ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। साथ ही आप HT Smartcast को भी फॉलो कर सकते हैं उनके सभी सोशल हैंडल्स पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग इन करें htsmartcast.com पर।
इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @htsmartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com।